सत्संग जी, प्रेम से कहना, सत्संगत कई वर्षों के बाद फिर से यहाँ रुड़की में इस विशाल रूप में सत्संग करने का मौका मिल रहा है। इतने लंबे अंतराल के बाद यहाँ आकर आप सभी के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। पिछले चंद रोज़ करीब 12-13 दिन मसूरी में बिताने के बाद दिल्ली के लिए जो रवानगी हुई, तो रास्ते में यहाँ पर आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। पिछले बरस शायद एक दिन या दो दिन ऊपर नीचे मसूरी पहुंचना हुआ था और वहां दो दिन रहने के बाद देहरादून में विशाल सत्संग करने का अवसर मिला था और उसके बाद लगातार 1.5 महीना मसूरी में बिताने को मिला था, जहाँ पर राजमाता जी तमाम उस समय में संगतों को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। और उस वक़्त भी ध्यान पहले तो यही था कि गढ़वाल कुमाऊँ के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जाया जाए, लेकिन ध्यान यही आया कि अधिक से अधिक समय राजमाता जी के संग बिताया जाए मसूरी रहकर। और उसके बाद फिर मार्च के महीने में आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का प्रांतीय संत समागम हरिद्वार में मार्च के पहले हफ्ते में संपन्न हुआ और उसके बाद फिर से यहाँ उत्तराखंड में आने का मौका मिला है। और उत्तराखंड का समागम जो मार्च के 7-8 तारीख को हुआ, उसके एक हफ्ते को छोड़कर फिर से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के समागम के लिए जबलपुर पहुंचना हुआ, जहां उन दोनों प्रांतों के भक्तजन वहां मिल बैठे। और यही संदेश, यही पैगाम जो आज भी आपने बच्चों, जवानों, बुज़ुर्गों से श्रवण किया, यही संदेश, यही पैगाम जो यूनिवर्सल है, एक भाषा वालों के लिए नहीं है, एक पहरावे वालों के लिए नहीं है, एक खान पान के ढंग वाले के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल मैसेज है जो सत्य के ऊपर आधारित है, जो सत्य भी यूनिवर्सल है। इसलिए वहाँ पर भी महापुरुष भक्तजन यही संदेश दे रहे थे। और उसके 2-3 रोज़ बाद झारखंड और बिहार का संत समागम रांची में हुआ और वहाँ पर भी वो अपनी भोजपुरी भाषा में, पूर्वी भाषा में गीत, भजन, कविता और व्याख्यान के रूप में यही संदेश दे रहे थे जो आज दिया जा रहा था कि जन्म लिया इंसान का, पता नहीं भगवान का, वाह रे वाह तेरी बंदगी। कि इंसानी जन्म लेकर भी तूने इस इंसानी जन्म का लाभ क्या उठाया, जन्म लिया इंसान का, पता नहीं भगवान का। जिस इंसानी जन्म को पाकर ही भगवान का पता चल सकता है और इसी जन्म को पाकर तू भगवान से अनजान रहा, कहीं पर कोई रीछ, कोई घोड़ा, कोई गधा 84 लाख योनियों में किसी भी एक योनि के हिस्से में ये बात नहीं कि वो भगवान को जान सके, यानी कि आत्मा अपने मूल की पहचान कर पाए, ये केवल और केवल इंसानी जन्म में ही संभव है। तो वहाँ पर भी यही संदेश दे रहे थे कि जन्म लिया इंसान का, पता नहीं भगवान का। और अगली बात जो, वाह रे वाह तेरी बंदगी, यानी कि हे बंदगी, इबादत प्रस्तिष करने वालों, नाना प्रकार की विधियाँ अपनाने वालों, नाना प्रकार के धर्म ग्रंथों के पठन पाठन करने वालों, बंदगी इबादत तो हो रही है ऐसा मानकर चल रहे हो, लेकिन महापुरुष ये कह रहे हैं कि उसका सिला कम से कम ये तो हो कि मालिक की पहचान तो हो जाए, अगर वो भी नहीं तो फिर वाह रे वाह तेरी बंदगी। और उसके एक चार दिन के बाद वेस्ट बंगाल के बर्धमान में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तमाम, चाहे वो असम, चाहे नागालैंड, चाहे त्रिपुरा, चाहे मेघालय, चाहे दार्जिलिंग, सिक्किम, उन तमाम प्रांतों के महापुरुष वेस्ट बंगाल के बर्धमान में उपस्थित हुए, और वो भी अपनी अपनी भाषा में, कोई नागा भाषा में, कोई नेपाली भाषा में, कोई असमिया भाषा में, वो भी अपनी अपनी भाषाओं में यही संदेश दे रहे थे। उड़िया भाषा हो, बंगला भाषा हो, वो तमाम अपने अपनी भाषाओं में यही संदेश हर मानव को दे रहे थे, यही निमंत्रण दे रहे थे। और उसके बाद फिर वहीं से वाराणसी पहुंचना हुआ और जौनपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, और इसी प्रकार से उन्नाव और बाराबंकी, शाहजहाँपुर और कन्नौज, और इस प्रकार से चंदौसी इत्यादि। वो एक तमाम ये एक यात्रा थी, हज़ारों मील के सफ़र वाली। और इस प्रकार से जगह जगह पर यही एक महापुरुष संत जन प्रयास जो कर रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड के इन पहाड़ी इलाकों में भी अभी भी, जैसे अभी आप जोनल इंचार्ज जी ने बताया कि मंगलवार को ही जो इनको सूचना दी गई कि ध्यान है कि रुड़की में बहुत अरसा हो गया है और इस सड़क पे गुजरना भी पिछले 3-4 बरस से हुआ नहीं है, क्योंकि काफ़ी यहाँ कंस्ट्रक्शन सड़क पर चल रही, और इसलिए रूट मध्य एक हरियाणा वाला ही बना रहा पिछले ये 3-4 बरस से, तो यहाँ गुज़रना भी ना हुआ। तो उस वक़्त जब मंगलवार को इनको बताया, लेकिन उससे पहले ये भी चर्चा चल रही थी सोमवार को कि वीरवार के बाद कहीं ऊपर पहाड़ी इलाकों में जाया जाए, और इन्होंने रूट भी बना लिया कि शुक्रवार को घनसाली जाएंगे, उसके अगले दिन रुद्रप्रयाग जाएंगे, और फिर उसके बाद कहीं तिल्ली जगह है वहाँ जाएंगे। इस तरह से वो भी रूट बन गया, लेकिन ध्यान आया कि समय सीमित है, पहाड़ी इलाके हैं, इसलिए अब की बार तो नहीं, फिर कभी अवसर मौका मिला तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चमोली इत्यादि वहाँ पर जाने का अवसर मिल पाए, और ऐसी श्रद्धा और भक्ति जो देखने को मिलती है वहाँ जा जा कर देखने को मिले। और अंततः यही रुड़की आज आकर आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। तो महापुरुष संत जन किस लिए प्रयास कर रहे हैं, और युगों युगों से ये प्रयास आखिर होता क्यों रहा है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में वलियों वीरों पैगंबरों ने आखिर ये संदेश किस लिए दिया? उन्होंने तो मंजिले मकसूद को पा लिया था, वो तो अपने इस ऊंचे म्यार को हासिल कर चुके थे, लेकिन उनके मन में यही एक परोपकार का भाव कि इंसान क्यों इस भवसागर में डूब रहा है, इसको भवसागर से पार उतरना है। और भवसागर से पार उतरने का एक ही साधन है, जब तक ये शरीरों से ऊपर नहीं उठेगा, जब तक ये आत्मा के बारे में सोचेगा नहीं, केवल और केवल शारीरिक तल, केवल और केवल सांसारिकता, केवल और केवल सांसारिक विषयों और सांसारिक प्रवृत्तियों में खचित रहेगा और आत्मा का नहीं सोचेगा, तब तक इसकी बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये संदेश हर मानव को दिए, हर इंसान को दिए, कि इंसान सोच विचार, इस गफलत की नींद में सोया सोया उम्र तमाम ना कर डाल। यहाँ संसार में तुझे ये चंद श्वास मिले हैं, वो भी 84 लाख योनियों में से सबसे श्रेष्ठ योनि, इंसानी योनि तुम्हें प्राप्त हुई है, तो क्या ये अंधकार में ही बिता डालेगा, क्या गफलत की नींद में सोया हुआ ही बिता डालेगा, क्या जागृति नहीं आएगी, क्या जागेगा नहीं, क्या तेरी ये भटकन यूं ही बनी रहेगी, या सातमा के साथ ये लगा रहेगा सिलसिला, ये आवागमन के बंधन में पड़ी रहेगी, जम जम मरे मरे पुन जमे, बहुत सजाए प्या देश लम्बे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ, यानी कि आत्मा क्या यही जन्म ना मरना इसके साथ लगा रहेगा, क्योंकि अन्य योनियों में आती रहेगी और वो भी योनि वाला शरीर जन्मेगा रहेगा, वो भी मट्टी में मट्टी हो जाएगा, फिर आत्मा फिर नया शरीर, तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? तो महापुरुष संत जनों ने इसीलिए मोक्ष और मुक्ति की बात की है, सेल्वेशन की बात की है, सोल और ओवर सोल की बातें, जो केवल बातें नहीं, बाइबल में भी बार बार यही कहा गया है कि सोल विच इज़ पार्ट ऑफ द ओवर सोल हैज़ टू, दिस सोल हैज़ टू रियलाइज द ओवर सोल, द यूनिवर्सल स्पिरिट। तो ये जो यूनिवर्सल स्पिरिट है, ये जो जीवंत परम शक्ति है, जिसको निराकार अकाल पुरुष परमात्मा अल्लाह गॉड कहा जाता है, इसको लोग साइंटिस्ट कहीं एनर्जी कह देते हैं, इसको अनेकों नाम दिए जाते हैं। अभी भी मसूरी से होकर आए हैं, पहाड़ी इलाकों में जाने के अवसर मिलते ही रहते हैं, कितना सौंदर्य, कितनी सुंदरता, एक कुदरत, और अक्सर इस परम सत्ता को संबोधित अनेकों ढंगों से किया जाता है। तो महापुरुष संत जन यही जानते हैं कि यही परम अस्तित्व है, यही कुदरत बनाने वाला है, और कुदरत के ज़रिए ये किस तरह से क्या क्या ये रूप सामने लिए लाया है, इसका निज़ाम भी हो रहा है। तो ऐसे परम अस्तित्व, ये निराकार अकाल पुरख, यही एक आत्मा का मूल भी है। इसलिए आत्मा ने इस मूल का बोध हासिल करना है, इसीलिए जागृत अवस्था में आने की महापुरुष ज़रूरत के ऊपर जोर दे रहे हैं कि उत्थिष्ठित जागृत, उठो जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने लायक है, जान लो जो जानने योग्य है, प्राप्त करने लायक ये दुनिया के सामान नहीं बताए, ये जायदादें हासिल करने वाले नहीं बात कही कि प्राप्त कर लो, उठो और जागो। अगर उठना भी हुआ, हिस्से में आ गया, जाग भी गए, लेकिन फिर भी ग्राहक दुनियावी पदार्थों के रहे, उस उठने को उठना नहीं कहा जाएगा, उस जगने को जगना नहीं कहा जाएगा। तो उत्थिष्ठित जागृत, उठो जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने लायक है, और जान लो जो जानने योग्य है। दुनियावी जानकारियां मुबारक हैं, जानकारियां हमें हासिल होती हैं, तो जानने योग्य दुनियावी जानकारियां मुबारक हैं, जीवन में जीने के लिए वो भी ज़रूरी हैं, तभी तो प्रगति होती है, तभी विकास होते हैं, तभी हमारे जीवन का सिलसिला चलता है। तो एक जानने दुनियावी जानकारियां मुबारक हैं, लेकिन जानने योग्य जो कहा गया है कि दैट व्हाट इज़ वर्थ नोइंग, वर्थ नोइंग योग्य जानकारी ये दुनियावी नहीं, ये जानने योग्य यही बताया कि आत्मा अपने मूल को जान ले, अपने आप को जान ले, अपने आप से ही अनजान, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है, कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि अपने सेल्फ यानी कि अपने असली अस्तित्व, ये जानने के लिए अपने मूल रूपी अस्तित्व को जानना ज़रूरी है। ये जो ऑल प्रिवेडिंग एंटिटी है, परमात्मा है, खालिक है, विठुल है, विठोबा है, जिसको अनेकों नामों से पुकारा जाता है, संत तुकाराम जी, नामदेव जी, महाराष्ट्र के संत इसको किसी और नाम से पुकार रहे हैं, इसी तरह से अनेकों अनेकों नामों से इसको संबोधित किया जा रहा है, लेकिन नामों में भेद हो सकते हैं, लेकिन इस परम सत्ता में भेद नहीं है। तो एक नामी की पहचान अगर हो जाती है, तब हमारे ये भ्रम मिट जाते हैं, आत्मा का भ्रम मिट जाता है, आत्मा को अपने आप की पहचान हो जाती है। और पहचान भी फिर ऐसी होती है कि बाकी सब दुनियावी पहचानें गिर जाती हैं, उनको हम फिर वो दर्जा महत्ता नहीं देते हैं। अब ऐसी पहचान हुई अपने आप की, ये जान लिया कि मैं तो आत्मा हूँ, निरोल आत्मा, जो निरोल परम सत्ता इस परमात्मा की अंश है, और जिसकी अंश है उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई मज़हब नहीं है। तो ये जाना कि मैं खामखा ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, औरत, मर्द, राजा, प्रजा इत्यादि, इन्हीं में उलझा रहा, गोरा रंग, काला रंग, भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, इन्हीं में ही उलझा रहा, इन्हीं में ही सीमित रहा। लेकिन अब जान लिया कि जिसकी मैं अंश हूँ इसकी कोई जाति नहीं, जैसे सूर्य की कोई जाति नहीं, उसकी किरणों की कहाँ जाति, जहाँ इस मूल परम स्थित परमात्मा की कोई जाति नहीं तो इसकी अंश की कहाँ पर जाति। इसीलिए जाति पाति पूछे ने कोई, हर को भजे सो हर का हुई, ये कथन इसीलिए हैं। और हैरानी की बात कि ये कथन पढ़ने वाले भी जाति पाति की मान्यताओं से इतने ज़्यादा प्रबल उसके प्रभाव में पढ़ भी वही रहे हैं, गा भी वही रहे हैं ये पंक्तियाँ कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, लेकिन मान्यता फिर वही की वही है। यानी कि वो पढ़ना पढ़ाना, वो सुनना सुनाना, फिर बात क्या बनी अगर उसके साथ समझ ही हासिल नहीं हुई, समझ उसके साथ जुड़ी नहीं, रियलाइजेशन अवेयरनेस ही नहीं आई, केवल तोते की रटन की तरह के शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे, और तोते यही गा रहे हैं और शिकारी जाल बिछा भी देता है, तोते उस जाल में आ भी जाते हैं, वो दाना फेंकता है, वो दाने चुगते हैं और वो जाल में उन पंछियों को, तोतों को लपेट कर अपने कंधे पर रख कर बाज़ार में बेचने जा रहा है, और उस जाल में फंसे हुए तोते फिर भी यही बोले जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। यानी कि वो पंक्तियाँ जब बोल रहे थे, शिकारी ने तो पहले यही सोचा कि सब पढ़ लिख गए हैं, सूझवान हो गए हैं, मेरी दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मेरा क्या जाता है, जाल बिछा देता हूँ, दाने बिखेर देता हूँ, और बात वही निकली कि वो रटन तो था, वो पंक्ति का उच्चारण तो तमाम तोते कर रहे थे, लेकिन उसके मायने, उसके साथ वो समझ जुड़ी नहीं हुई थी, वो अवेयरनेस नहीं थी, इसीलिए वो उसी शिकंजे में, उसी बंधन में वो पड़ गए। तो इसीलिए यहाँ पर बात यही हैरानी होती है कि महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी, कबीर जी के वचन, तुलसीदास जी के वचन, पाक कुरान की आयतें, इसी तरह से अनेकों अनेकों धर्म ग्रंथों में जो स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए वचन गुरु साहिबानों के, वो पढ़े भी जा रहे हैं, सुने भी जा रहे हैं, गाए भी जा रहे हैं, लेकिन जो काम करने के लिए उसमें लिखा गया है, कहा गया है, वो काम करने के लिए जब कहा जाता है तो इंसान उसी से अपने कदम पीछे हटाता है और यही मानता है कि ये तो संभव ही नहीं है। कभी ये विचारा है कि एक बात अगर संभव ही नहीं है, विच इज़ एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, फिर ये भी सोचना पे मजबूर होंगे हम, फिर धर्म ग्रंथों में आखिर लिखा ही क्यों? एक चीज़ संभव ही नहीं है, अगर वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं और राम जी आगे बता रहे हैं तो उनको भी तो फिर ये बात समझ में आती हो गई, ये संभव ही नहीं है कि काहे को लोगों के लिए लिख दें, कह दें, काहे को वाल्मीकि जी लिख दें, काहे को तुलसीदास जी लिख दें, काहे को ऋषि व्यास जी लिख दें, अगर ये बात संभव ही नहीं है आत्मा परमात्मा को जान ही नहीं सकती है तो फिर मायने क्या रहे। हम यही सोचते हैं कि ये पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना बस पुण्य की बात है, पढ़ लो सुन लो पुण्य हो गया। लेकिन महापुरुषों ने इसको पुण्य या पाप की उस परिधि में नहीं लाए। उन्होंने यही लिखा कहा कि इंसान इसको विचारे सोचे और इसको इस रास्ते पे चल निकले, ये नाता अपना परमात्मा से जोड़ ले। ब्रह्म ज्ञानी जो साधन हमेशा से रहे हैं इनका ये साधन अपना ले। जो पहले भी लिखे हैं कि गुरुबिन भवने तरह न कोई, जो बिरंची संकट सम होई, कि ये ब्रह्म ज्ञानी को साधन बनाकर ही आत्मा अपने मूल परमात्मा की पहचान कर ले। तो ये अगर असंभव सी बात होती, इम्पॉसिबल सी बात होती, तो फिर ये पंक्तियाँ तमाम धर्म ग्रंथों में उसके कोई मायने नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। एक चीज़ जो संभव ही नहीं है तो फिर वो करने के लिए आखिर कहा क्यों गया है कि यही तेरी अवसर यही तेरी बार, कि यही अवसर है यही मौका है, ये आखिर क्यों लिखा। फिर तो अवसर मौके और आते हैं आते रहेंगे, जन्म होते रहेंगे, शरीर मिलते रहेंगे, फिर यही तेरी अवसर यही तेरी वार किस लिए? क्या भोजन के लिए, भोग के लिए, शरीर के लिए यही तेरी अवसर यही वार? वो भी गलत, क्योंकि शरीर जानवरों का भी है, पशुओं का भी है, परिंदों का भी है, समुद्र में मछलियों का भी है, वो भी शरीर वाले हैं। भोजन हम करते हैं, तमाम योनियों वाले करते हैं, उनकी भी रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, उनकी भी औलादें होती हैं, हमारी भी होती हैं। फिर यही तेरी अवसर यही तेरी वार, फिर इसके मायने क्या रहे, इसका महत्व क्या रहा? कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तो मूलतः इसके ऊपर विचार करना ज़रूरी है कि आखिर तमाम महापुरुषों ने वही बात की, उत्थिष्ठ जागो, जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने लायक है, जान लो जो जानने योग्य है, और इसी से ही उद्धार होने वाला है, इसी से ही कल्याण होने वाला है, इसी के कारण आत्मा मोक्ष की पात्र बनेगी, इसी के कारण मन के अंधकार मिटेंगे, मन के भ्रम मिटेंगे। जो दीवारें खड़ी इस मन में हुई हैं, तेरे मेरे वाली, जाति पाति वाली, मजो मिल्लत वाली, काले गोरे वाली, गरीब अमीर वाली, ये तमाम दीवारें ढह जानी तभी संभव होंगी जब ये बोध हो जाएगा। आत्मा के भी भ्रम मिट जाएंगे, मन के भी भ्रम मिट जाएंगे, दोनों के भ्रम मिटेंगे अज्ञानता के दूर होने के कारण, उजाला हो जाने के कारण। ये तभी ये भ्रम मिटते हैं, और भ्रम मिटते हैं तो बंधनों से निस्तारा हो जाता है। इसलिए ये बंधनों से निस्तारा प्राप्त करना ज़रूरी है, और तभी हम एक अपने असली रूप में स्थित होकर फिर ये जीवन के सफ़र को तय करेंगे। अब पहले दृष्टि हमारी अज्ञानता वाली थी, लेकिन अब ज्ञान वाली दृष्टि हो गई है। अज्ञानता वाली दृष्टि भेद वाली दृष्टि थी, लेकिन अब उजाले वाली दृष्टि वो अभेदता वाली दृष्टि है। जहाँ पर वो दृष्टि है ऐसी जिसको समदृष्टि कहा जा रहा है, जो फिर किसी को ऊंचा किसी को नीचा करके नहीं देख रही है, जो किसी को बेगाना करके अब नहीं देख रही है, अब सबको अपना करके देख रही है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रबल हो गई है कि सारी वसुधा के ऊपर बसने वाले तमाम लोग एक कुटुंब परिवार का हिस्सा है। ये तभी संभव हुआ अपना परिवार कांग दूसरे को जाना, जाना पहले जाना, ये बोध हासिल किया, तभी दूसरों को भी अपना मान रहे हैं। और लेकिन जब तक जाना नहीं था तब तक तो बेगानेपन की भावना प्रबल थी, दुत्कारने की भावना प्रबल थी, ये भेद वाले भाव प्रबल थे। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही संदेश हर इंसान हर मानव को दिए चले गए हैं, और आज भी यही संदेश दे रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा समय हमें प्राप्त हुआ है, ये चार दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। अभी भी कबीर जी के वचन भी दोहराए जा रहे थे कि हाट जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, ये पंक्तियाँ हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। बात वही है कि ये चार दिनों की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। तो इसलिए ये चार दिनों का जो समय हमें मिला है, इसको पहरों में भी बांटा गया है कि इंसान चार पहर धंधे किया, चार पहर दिया सोए, और एक पहर हरि नाम बिन तो मुक्ति कैसे होए। तो कहते हैं कि ये पहर भी इसको मान ले तो ये भी बीतते चले जा रहे हैं। एक एक पल, एक एक क्षण कीमती है, एक एक पल की कदर हो जाए, एक एक सांस की कदर हो जाए। यूं ही ये एक सांस की कीमत कितनी है, कभी हमारे सांस उखड़ने शुरू हों तो लेकर जाते हैं भागकर किसी नर्सिंग होम में, किसी हॉस्पिटल में सांस उखड़ रहे हैं। सांस उखड़ रहे होते हैं तो एहसास करें कितने कीमती है, और अचानक भी ये लड़ी टूट जाती है इन सांसों की। एक पानी का बुदबुदा आसमानस की जात, जैसे कहा गया है कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुदबुदा है पानी का, कि ये भरोसा नहीं है। पलदा वासा वसण एथे रैण नु अगे डेरा है, लैला तोहफे घर नु कली एहो वेला तेरा है। कि पलदा वासा, ये नहीं है कि हमेशा का वासा, पलदा वासा, पलदा वासा इस संसार में, जिसको सराय भी कहा गया है कि पलदा वासा वसण एथे रैण नु अगे डेरा है, लैला तोहफे घर नु कली, यानी कि जो असली तेरा टिकाना है, तोहफे यानी कि असली दौलत, ये नाम की दौलत, ये तोहफे, ये दौलत साथ ले ले। तो इसलिए ये जो पल की, ये क्षणों की बात है, जो लम्हों की बात है, जैसे आसमान में बादलों में बिजली चमकती है, कड़कती है, इंसान अभी देख भी नहीं पाता, आँखों से ओझल भी हो जाती है। समुद्र में एक लहर उठती है, अभी ठीक से देख भी नहीं पाता और लहर शांत भी हो जाती है। तो इसी तरह से हे इंसान, तेरे सांसों का क्या भरोसा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये तन काचा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, फीका लागे टूटेगा कछु ना आयो हाथ। तो इसलिए समय रहते हुए ही तूने वो कार्य करना है जो अति लाजिम है, जो कदम उठाना अति लाजिम है, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, दोनों जहानों को संवारने के लिए जो कदम उठाने लाजिम है, वश वो कदम उठा लिए जाएं, वरना तो ये घाटे का सौदा हो जाएगा। लोक भी हाथों से गया, परलोक भी हाथों से गया, यानी कि दोनों जहानों की बाजी हारने वाले बन जाएंगे। तो हारने वालों का क्या, उनका क्या दर्जा होता है। तो इसलिए बाजी जीतने की बातें हो रही हैं कि इस संसार में पैदा हुए हैं, इंसानी रूप में पैदा हुए हैं, तो ये बाजी जीतने का मौका मालिक ने बख्श दिया है। ये हीरे जैसा जन्म हमें दे दिया है, इसको कौड़ियों के भाव मत गंवा दें। हीरे जैसा जन्म मिला है तो इसकी कदर भी वही करें। ये लड़ाई झगड़े वैर ईर्ष्या लोभ लालच लूट मार, ये मार काट, ये मज़ो मिलत धर्म का नाम लेकर कुचलना मसलना, मासूमों की जाने लेनी, यही सिलसिले करते करते इंसान हीरे जैसा अमोलक जन्म किस कदर अपने पाँव के नीचे ही कंकर की तरह उसको रौंद देता है। और जब खुद ही कंकर की तरह उसको रौंद देता है, यानी खुद ही अपनी कीमत यही डालता है, तो फिर हरि की दरगाह में इसकी क्या कीमत होगी। जब तक ये खुद कीमत नहीं अपनी डालेगा, जब तक ये एहसास नहीं करेगा, तब तक इसका भी फिर कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों का कथन वो सदैव से यही रहा है कि हे मानव, हे इंसान, समय रहते हुए ही ये काम कर ले, ये नाता जोड़ ले, और ये बाकी जितना भी जीवन का सफ़र तेरा रह जाए इस बोध को हासिल कर लेने के बाद वो तमाम सफ़र वो प्यार खलूस वाला हो जाए, वो मोहब्बत वाला हो जाए, वो एक भाईचारे वाला हो जाए, एक दूसरे को अपनाने वाला हो जाए, एक दूसरे के सुख दुख बांटने वाला हो जाए, इस कदर वो सफ़र तमाम हमारा हो जाए, उसी सफ़र की कीमत है। इस जन्म की तभी कीमत है, इन श्वासों की तभी कीमत है, उस जीवन की भी तभी कीमत है, वरना तो जीवन होते हुए भी जीवन नहीं है, वो जिंदादार गौर माने जाते हैं, चलती फिरती लाशें मानी जाती हैं। इसलिए जीवन को भी जीवन मिले, जीवन को भी प्राण मिलें, धड़कन दिल को भी असली धड़कनें प्राप्त हों, मोहब्बत वाली प्यार वाली, यही प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और यहीं से दिल्ली के लिए रवानगी है और सफ़र भी लंबा है। आप भी कहाँ कहाँ गाँव खेड़ों से चल कर आए हैं, रात्रि का वक्त है, इसलिए शाम से ही जब से सत्संग का प्रारंभ हुआ है तमाम वचन अमोलक थे। छोटे बच्चों ने कहा अमोलक वचन, कल्याणकारी वचन, बुज़ुर्गों ने कहा, बच्चियों ने कहा, गीतकार कवियों ने कहा, वो तमाम वचन अमोलक थे, कीमती थे, अमलीक लाल रतन जिसको कहा गया है। तो इसलिए दास शब्दों का और सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन्यवाद।